नमस्कार भारत, 9 नवंबर दिन सोमवार, मैं हूं संदीप सोनी। बिहार विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की पराजय, महागठबंधन को जनादेश मिला।
पिछले चुनाव वो इसलिए जीते थे कि हमारी पार्टी के दो हिस्से थे, आरजेडी और जेडीयू, दो हिस्सों में थे हम लोग, इसलिए बीच से वो निकल गए थे। गठबंधन बनाकर पुरानी पार्टी को फिर से हम लोगों ने एक कर दिया, इसलिए जीत हुई है।
भाजपा की हार पर शत्रुघ्न सिन्हा ने मन की बात कही।
ये मेरी सदुपयोगता हुई होती या मेरा इस्तेमाल किया होता तो हम बहुत बेहतर परिणाम देखते। मैं ऐसा नहीं कहता हूँ, लेकिन हाँ, कुछ बढ़िया तो होता, परिणाम पहले से बेहतर होता, कुछ सीटों का इजाफा तो जरूर होता।
म्यांमार में संसदीय चुनावों की मतगणना जारी, समाचार पत्रों की समीक्षा और खेल की खबरें, लेकिन पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार प्रगति सक्सेना से। बिहार के विधानसभा चुनाव में महागठबंधन को भारी जीत मिली है। इस गठबंधन में राजद, जदयू और कांग्रेस शामिल हैं। राष्ट्रीय जनता दल को 80, जनता दल यूनाइटेड को 71, कांग्रेस को 27 और भाजपा को 53 सीटें मिली हैं। वहीं वामपंथी दलों को 3, लोक जनशक्ति पार्टी और राष्ट्रीय लोक समता पार्टी को 2-2 सीटें मिली हैं। हम पार्टी को 1 सीट मिली है। निर्दलीय उम्मीदवार 4 जगह से जीते हैं। म्यांमार में 25 साल बाद अपेक्षाकृत स्वतंत्र रूप से हुए आम चुनावों की मतगणना शुरू हो गई है। विपक्षी दल नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी के समर्थक अपनी जीत के लिए लगभग आश्वस्त हैं। पर्यवेक्षकों का कहना है कि ये मतदान कुल मिलाकर निष्पक्ष रहा। अमरीका के विदेश मंत्री जॉन कैरी ने भी इन चुनावों का लोकतंत्र की तरफ एक निश्चित कदम के तौर पर स्वागत किया। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि इस चुनावी प्रक्रिया में अभी कई खामियां हैं। अधिकृत वेस्ट बैंक में इसराइलियों पर और हमले होने की खबर है। एक फलस्तीनी व्यक्ति ने अपनी कार एक बस स्टॉप पर चढ़ा दी, जिससे 4 इसराइली घायल हो गए। सुरक्षा बलों ने कार चालक को गोली मार दी। एक अन्य घटना में एक फलस्तीनी महिला ने एक सुरक्षा गार्ड पर चाकू से हमला किया, गार्ड ने महिला को गोली मार दी। ये घटनाएं उस वक्त हो रही हैं जबकि इसराइल के प्रधानमंत्री बिन्यामिन नेतन्याहू अमरीकी राष्ट्रपति ओबामा से मिलने वाले हैं। दोनों नेताओं के बीच इसराइल को दी जाने वाली सैन्य सहायता पर बातचीत होने की संभावना है। फ्रांस के विदेश मंत्री लॉरेंट फाबिये ने विश्व के नेताओं से अपील की है कि वो मौसम में आ रहे बदलाव से निपटने के लिए जल्द समझौता करें, क्योंकि पृथ्वी पर जीवन अब संकट में है। फ्रांसीसी विदेश मंत्री 70 देशों के मंत्रियों और प्रतिनिधियों को संबोधित कर रहे थे, जो इस महीने के आखिर में संयुक्त राष्ट्र के मौसम को लेकर हो रहे सम्मेलन में ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को सीमित करने पर एक समझौते को अंतिम रूप देने की कोशिश करेंगे।
Que jusqu'à présent, on a réussi à résoudre le problème. Je sais que il y a un risque.
मैं जानता हूं कि अब तक हम इस समस्या को हल करने में कामयाब नहीं हुए हैं। मैं जानता हूं कि मौसम में बदलाव एक असाधारण संकट है। हम जानते हैं कि इससे निपटने के लिए कोई दूसरी योजना नहीं है, क्योंकि हमारे पास रहने के लिए कोई दूसरा ग्रह नहीं है। इसलिए हमें इससे निपटने में सफल होना ही होगा, और ऐसा करने के लिए हमें बहुत से मुद्दों को सुलझाना है। ये थे लॉरेंट फाबिये के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। उधर विश्व बैंक ने भी चेतावनी दी है कि अगर ग्लोबल वार्मिंग को रोकने की कोशिश ना की गई तो वर्ष 2030 तक 10 करोड़ और लोग गरीबी और कमी का जीवन जीने के लिए मजबूर हो जाएंगे। विश्व बैंक के मुताबिक अफ्रीका में खाद्य पदार्थों की कीमत में 12% इजाफा हो सकता है, मलेरिया से मरने वालों की तादाद में बढ़ोतरी हो सकती है और प्रवासियों की संख्या भी बढ़ने की संभावना है। बीबीसी समाचार।
नमस्कार भारत में अभिवादन स्वीकार करिए संदीप सोनी का। बिहार विधानसभा चुनावों में राष्ट्रीय जनता दल, जनता दल यूनाइटेड और कांग्रेस से मिलकर बने महागठबंधन को भारी जीत मिली है। राज्य में विधानसभा की कुल 243 सीटें हैं, जिनमें से राष्ट्रीय जनता दल को 80, जनता दल यूनाइटेड को 71, कांग्रेस को 27 और भारतीय जनता पार्टी को 53 सीटें मिली हैं। आइए सुनते हैं पटना से नीरज सहाय की रिपोर्ट।
शुरुआती दौर की मतगणना में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय में कार्यकर्ताओं में बेहद जोश दिखा, लेकिन सुबह 11 बजते बजते सारा नजारा बदला बदला सा नजर आने लगा और दोपहर तक साफ हो गया कि मौन मतदाताओं ने अपनी सहमति राष्ट्रीय जनता दल, जनता दल यूनाइटेड और कांग्रेस के पक्ष में दी है। भाजपा नेता सुबह जो दावे कर रहे थे दोपहर तक उस पर अपनी सफाई देने लगे।
देखिए सुबह का जो ट्रेंड था वो हमारे पक्ष में, तो जब हमारे पक्ष में होगा तो हम खुशी का इजहार करेंगे ही। हमें लगा था कि इस जंगल राज से मुक्ति मिल रही है, लेकिन अब परिणाम प्रतिकूल है।
मतगणना के दौरान दोपहर ढलते ढलते महागठबंधन की महाजीत साफ नजर आने लगी और समर्थकों में उत्साह की लहर दौड़ने लगी। जोरदार नारेबाजी भी होती रही।
विश्वास था, पूर्ण विश्वास था,
रिजल्ट बता रहा है कि सच ने विजयी प्राप्त की है।
वहीं दूसरी ओर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और लालू प्रसाद भी मीडिया से मुखातिब हुए।
जो बिहार के चुनाव परिणाम आए हैं इसके लिए मैं बिहार के लोगों को बधाई देता हूं और ये बिहार के लोगों की जीत है।
बिहार के मुख्यमंत्री
आशा से बिल्कुल विपरीत चुनाव परिणाम आने के बाद बीजेपी में उदासी और आत्ममंथन का दौर चलने लगा। प्रदेश स्तर के नेताओं ने अपनी हार को स्वीकारा और जनता के फैसले का स्वागत किया। तमाम सियासी अटकलबाजियों के बीच भाजपा के एक वर्ग का मानना है कि करारी हार के लिए आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का आरक्षण से संबंधित बयान सबसे ज्यादा आत्मघाती साबित हुआ। वहीं दूसरी चर्चा तो यह है कि चुनाव से पहले दाल की कीमत पर नियंत्रण लगाने में केंद्रीय खाद्य आपूर्ति मंत्री रामविलास पासवान की विफलता एनडीए पर बहुत भारी पड़ी। यह भी माना जा रहा है कि एनडीए ने मुख्यमंत्री पद के लिए किसी बिहारी चेहरे पर दांव नहीं लगाया, जिसके कारण महागठबंधन को बाहरी और भीतरी सीएम प्रत्याशी का मुद्दा जोरदार ढंग से उठाने का मौका मिल गया। बहरहाल महागठबंधन ने बिहार में महाजीत हासिल कर ली है। अब देखना यह है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भाजपा के साथ रहते हुए जो विकास की मंजिल तय की थी उसकी निरंतरता लालू प्रसाद के साथ रहते हुए कितनी दूर तक कायम रह पाती है। नीरज सहाय, बीबीसी पटना।
और आइए अब जानते हैं उन चर्चित चेहरों के बारे में जिनके सर बिहार विधानसभा जीत के चुनाव में जीत का सहरा बंधा और उनके बारे में जिन्हें हार का स्वाद चखना पड़ा। बता रही हैं प्रगति सक्सेना।
चुनाव में जीत दर्ज करने वाले अहम उम्मीदवारों में राष्ट्रीय जनता दल प्रमुख लालू प्रसाद यादव के दोनों बेटे शामिल हैं। तेजस्वी यादव राघोपुर तो तेज प्रताप महुआ सीट जीतकर पहली बार विधानसभा में पहुंचे हैं। आरजेडी के ही सीनियर नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी अलीनगर, मुंद्रिका सिंह यादव जहानाबाद तो मोहम्मद इलियास डेहरी सीट से जीत दर्ज करने में कामयाब रहे हैं। जनता दल यूनाइटेड के विजय कुमार चौधरी, सराय रंजन, श्याम रजक फुलवारी, जय कुमार सिंह दिनारा, श्रवण कुमार नालंदा, ददन यादव डुमराव से जीत हासिल करने में कामयाब रहे हैं। कांग्रेस के सीनियर नेता सदानंद सिंह कहलगांव सीट से निर्वाचित हुए हैं। विवादों में घिरे रहे अनंत सिंह मोकामा से निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर खड़े हुए थे और जीत हासिल करने में कामयाब रहे। भारतीय जनता पार्टी के सीनियर नेता नंद किशोर यादव और नितिन नवीन ने भी जीत हासिल की है। पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने इमामगंज सीट से जीत हासिल की, लेकिन मखदूमपुर में वो हार गए। हारने वाले नेताओं की बात करें तो बीजेपी के सीनियर नेता अश्विनी कुमार चौबे के पुत्र अर्जित शाश्वत और सीपी ठाकुर के बेटे विवेक ठाकुर को हार झेलनी पड़ी है। बीजेपी नेता रामाधार सिंह, राजेंद्र प्रसाद दिनारा, गोपाल नारायण सिंह, रामेश्वर प्रसाद नोखा, नीतीश मिश्रा भी चुनाव हार गए। मांझी की पार्टी हम के उम्मीदवार शकुनी चौधरी और लवली आनंद को भी चुनाव में नाकामी मिली है।
लोकसभा चुनाव में करारी शिकस्त झेलने वाले जनता दल यूनाइटेड ने बिहार विधानसभा चुनाव के जरिए जोरदार वापसी की है। पार्टी के नेता इसे जनता की जीत बता रहे हैं। हमारे सहयोगी वात्सल राय ने जनता दल यूनाइटेड के प्रमुख शरद यादव से बात की और सबसे पहले यही पूछा कि वो इस जीत को कैसे देखते हैं।
ये देश का चुनाव था, एक सूबे का चुनाव नहीं था। इसको देश का चुनाव बनाया भारत सरकार के सब मंत्रियों ने, प्रधानमंत्री ने, और एक पार्टी जो कहती थी कि विश्व की सबसे बड़ी पार्टी, उसके अध्यक्ष ने। और इस चुनाव के बाद देश की राजनीति का नया रास्ता खुलेगा।
एक महागठबंधन का आप लोगों ने प्रयोग किया था, क्या राष्ट्रीय स्तर पर उसका दोहराव होगा? लेकिन मेरा साथ में एक सवाल ये भी है कि मुलायम सिंह यादव जिस तरह से महागठबंधन में पहले शरीक हुए फिर बाहर निकल गए, आगे की संभावनाएं आप कैसे देखते हैं?
गांव और देहात में एक बात देखी होगी आपने कि कुआं खोदो और पानी न निकले, तो फिर नया कुआं खोदा जाता है। जरूर प्रयास करेंगे कि एक मजबूत विकल्प खड़ा हो।
क्या वजह रही यहां भारतीय जनता पार्टी की बिहार में हार की, और जिस तरह से महागठबंधन को भारी बहुमत मिला है इसके आप क्या कारण देखते हैं?
पिछली चुनाव वो इसलिए जीते थे कि हमारी पार्टी के दो हिस्से थे, आरजेडी और जेडीयू, दो हिस्सों में थे हम लोग, इसलिए बीच से वो निकल गए थे। गठबंधन बनाकर पुरानी पार्टी को फिर से हम लोगों ने एक कर दिया, इसलिए जीत हुई है।
जनता दल यूनाइटेड के प्रमुख शरद यादव। बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान भारतीय जनता पार्टी ने अपने सांसद और फिल्म अभिनेता शत्रुघ्न सिन्हा को बहुत ज्यादा तरजीह नहीं दी थी। चुनाव के नतीजे आने के बाद शत्रुघ्न सिन्हा को लगता है कि पार्टी ने उन्हें प्राथमिकता यदि दी होती तो चुनाव के नतीजे कुछ और होते।
कुछ लोगों ने शायद ये ठान लिया था कि हम तो डूबे हैं सनम, तुझे भी ले डूबेंगे। मैं इस पर अपना दुखी व्यक्त कर सकता हूँ, क्योंकि हैं तो वो लोग साहब अपने पार्टी के, लालू यादव हैं या नीतीश बाबू हैं या राहुल गांधी हैं, जिन्होंने इतना बेहतरीन प्रदर्शन किया है बिहार में। और उस बेहतरीन प्रदर्शन को देखते हुए दो चीज कहने का मन करता है, एक तो लोकतंत्र की जीत हुई है, उनकी जीत तो हुई, बधाई के पात्र हैं, लेकिन लोकतंत्र की जीत हुई है, बिहार की जीत हुई है और बिहारियों की जीत हुई है। इस त्रिमूर्ति को अगर कहा जाए कि इन्होंने साबित कर दिया अपने आप को नीम पे करेला नहीं बल्कि सोने पे सुहागा, तो अतिशयोक्ति नहीं होगी।
क्या आपको लगता है कि आपको दूर करना ही एक निर्णायक कदम रहा, वो एक मुद्दा भी बना, बिहारी बनाम बाहरी का मुद्दा बना?
ये दुखद रहा, जो आदमी लोकसभा से दो बार राज्यसभा करने के बाद लोकसभा से जो मासिक के जरिए रिकॉर्ड मार्जिन से जीत के आता है, एक बार नहीं बल्कि दो बार, इतने फॉलोअर्स भी हैं, इतने समर्थक भी हैं, प्रशंसक भी हैं, उनके वोटर्स और सपोर्टर्स भी हैं, उन्हें दुख नहीं पहुंचेगा कि प्रतिक्रिया तो कुछ हो सकती है? मेरी सदुपयोगता हुई होती या मेरा इस्तेमाल किया होता तो हम बहुत बेहतर परिणाम देते, मैं ऐसा नहीं कहता हूं, लेकिन हाँ कुछ बढ़िया तो होता, परिणाम पहले से बेहतर होता, कुछ सीटों का इजाफा तो जरूर होता। जैसे कि मैं हमेशा मानता हूं कि हमारे प्रधानमंत्री डैशिंग डायनेमिक एक्शन हीरो, वो उनको इस तरह से हमने चुनाव में शायद सही ब्रीफिंग नहीं दी और इस तरह से गांव-गांव कस्बों-कस्बों में उतारा, जो हमारे सुप्रीम लीडर हैं, अगर हमने उनको सही ढंग से और इस्तेमाल किया होता तो हम सबों के लिए बहुत बेहतर होता, हमारी इज्जत के लिए भी, डिग्निटी के लिए और पार्टी को और बल मिलता। अगर वो ना एनर्जी लेकर तरह से उन्होंने अग्रेसिव कैंपेनिंग नहीं की होती हमारे प्रधानमंत्री जी ने, तो शायद जितनी सीटें हमको बिहार में आई उतनी भी नहीं आती। इसलिए एक तरफ से तो चलो ठीक है, लेकिन भी ठीक नहीं है इस तरह से उनको पूरे बिहार में जिस तरह दौरा कराया गया। हम लोग हैं ना, हम लोग थे, हम लोग के जैसे लोगों को हम लोग उनका बोझ थोड़ा बांट सकते थे, अगर कम नहीं भी कर सकते तो बांट सकते थे, हम लोग उनका साथ देते, हम जैसे लोगों को लगाना चाहिए था बिल्कुल, जिनको कि देश में लोकप्रियता भी है, लोग मानते भी हैं, जानते भी हैं, पहचानते भी हैं, प्यार भी। बहरहाल अब तो इन बातों का कोई लाभ नहीं क्योंकि चुनाव के नतीजे आ चुके हैं और अब तो हमारे पास सिर्फ अनुशासनात्मक कार्रवाई हो ना हो अब समीक्षा के लिए है, और समीक्षा करके इंट्रोस्पेक्शन करके अपने को मजबूत करना है, क्योंकि राजनीति के कैलेंडर में कोई आखिरी तारीख नहीं होती।
ये थे भाजपा नेता शत्रुघ्न सिन्हा, उनसे बात कर रहे थे हमारे साथी वात्सल्य राय। नमस्कार भारत, आप सुन रहे हैं संदीप सोनी के साथ। एक बार फिर बिहार की बात। बिहार में भारतीय जनता पार्टी की हार आखिर क्यों हुई? पार्टी इसका गहराई से मंथन जब करेगी तब करेगी, लेकिन पार्टी नेता इस हार के बारे में फौरी तौर पर क्या कह रहे हैं? बीजेपी सांसद और बिहार के प्रभारी भूपेंद्र यादव।
चुनाव के समय जितने भी मुद्दे उठते हैं किसी भी राजनीतिक दल को, उसके ऊपर अपनी राय देनी होती है, और हमने बड़ी स्पष्टता के साथ सभी विषयों पर अपनी राय रखी थी, लेकिन वो जनता तक ज्यादा वोट के रूप में परिवर्तित होते तो जन समर्थन हमारे पक्ष में आता, क्योंकि परिवर्तित नहीं हुए इसलिए जन समर्थन हमारे पक्ष में नहीं आया। बिहार का चुनाव बिहार के प्रदेश और उसकी इकाई के संबंध में था, उसमें हम लोगों को जनादेश नहीं मिला है, उसको हम विनम्रता से स्वीकार करते हैं, जैसा पार्टी तय करेगी। लेकिन किसी भी चुनाव का एक विश्लेषण करने का समय होता है,
बीजेपी सांसद और बिहार के प्रभारी भूपेंद्र यादव। बिहार में महागठबंधन की जीत के बाद हमारे सहयोगी पंकज प्रियदर्शी ने राष्ट्रीय जनता दल के नेता अशोक सिंह से मुलाकात की। अशोक सिंह उत्तर प्रदेश से आकर बीते कई महीनों से बिहार में डेरा डाले हुए थे और जमकर चुनाव प्रचार कर रहे थे। पंकज प्रियदर्शी ने उनसे सबसे पहले यही पूछा कि ये जीत अपने महत्व के हिसाब से कितनी बड़ी है।
ये बिहार का जो चुनाव था, ये दो ताकतों का मिलन हुआ, जब लालू और नीतीश वोट बैंक्स इनके थे, क्योंकि ये वोट बैंक जाति के नहीं थे, गरीब गुरबा अकलियत पिछड़े दलित सब समूह का एक अकुले अगड़े भी जो गरीब हैं उनका भी एकजुटता थी। और मोदी जी जिस तरह निरंतर बिहार को बदनाम करने का काम कर रहे थे, डीएनए का भी टेस्ट करा रहे थे, कभी गाय चल रही थी, विकास के मुद्दा से शुरू हुए फिर बदजुबानी हो गई, बड़ा गंदा देश का प्रधानमंत्री से ये भाषा, इससे बिहार की जनता बड़ी दुखी हुई।
लेकिन जिस तरह जितनी बड़ी जीत हुई है जनता की उम्मीदें भी बहुत बढ़ेंगी, और अभी भी कुछ तबकों में आशंकाएं हैं, जो पहले लालू यादव का शासनकाल रहा है और बीजेपी ने इसको भुनाने की कोशिश की जंगल राज कहके, नाकाम रहे, लेकिन फिर भी क्या जिस तबके को ये आशंका है उसको लेकर क्या पार्टी या सरकार कुछ आश्वासन देना चाहेगी?
किसी भी प्रकार की आशंका नहीं होनी चाहिए। पहले भी कहा था ये पूरा चुनाव नीतीश का फेस और लालू का बेस, इस आधार पे चुनाव लड़ा गया है, और ये बिल्कुल लोग अस्वस्थ हो जाएं।
आपके अध्यक्ष तो कह चुके हैं कि ये अगड़ों और पिछड़ों की लड़ाई है, लेकिन जब आप सरकार में होते हैं तो पूरा राज्य आपका होता है, पूरे राज्य के नागरिक, वो नागरिक भी आपके नागरिक होते हैं जिन्होंने आपको वोट नहीं दिया हो।
उन्होंने ये भी कहा है कि जो चुनाव में हमने कहा हो आज जो कह रहे हैं, लेकिन हमारे मन में कोई दुर्भाव नहीं है, अब नहीं दिया अब से देना, हम विकास करके बिहार को उठाने का काम करेंगे, अगड़ी से लेकर पिछड़ी जातियों की सबकी सरकार है।
जी बताइए, एक और बड़ा सवाल है सरकार के गठन को लेकर, और आशंकाएं अटकलें कई तरह की हैं कि शायद इतना आसान नहीं होगा सरकार गठन की या मंत्री पद का बंटवारा, आपको क्या लगता है?
जब ये गठबंधन हुआ तो ये नहीं होगा, वोट नहीं ट्रांसफर होंगे, सीटों का बंटवारा नहीं होगा, ये नहीं होगा, वो अगर मगर में पूरा कंफ्यूजन था, लेकिन कहीं किसी को पता चला सबके वोट इंटैक्ट। इसी तरह सरकार में कोई दुविधा नहीं, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं, अब उन्हीं के नेतृत्व में सरकार ये महागठबंधन की चलेगी।
उप मुख्यमंत्री कौन होगा? तेज प्रताप, तेजस्वी या मीसा जी का नाम भी आ रहा है?
ऐसा हमें लगता नहीं है, कहीं पर ये सब दोनों लोग तय कर लेंगे। अब ये दोनों लोग ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिससे बिहार की जनता को कष्ट हो, और बिहार की जनता अगर अब की कष्ट हुआ तो कभी माफ नहीं करेगी। जो नीतीश चाहेगा, जनता चाहेगी, बिहार चाहेगा, वही काम होगा।
आखिरी सवाल, नरेंद्र मोदी को लेकर आज उतनी टिप्पणी नीतीश जी ने भी नहीं की और बड़ी विनम्रता की बातें कर रहे थे, कह रहे थे कि अब जो हुआ सो हुआ, आगे मोदी जी ने उनको फोन भी किया, लेकिन आपके नेता अभी भी आक्रामक रुख अपनाए हुए हैं नरेंद्र मोदी को लेकर।
आक्रामक नहीं, व्यंग्यात्मक है, हंसी के माहौल में कह रहे हैं कि मोदी जी अब हम आए के लालटेन लेकर बनारस में आपने जो जो वादे किए झूठ बोले हैं उनको मैं लालटेन की रोशनी में देखूंगा कि आपने उस गांव का विकास किया जो गोद लिया कि नहीं, ने कहा था गंगा के घाट बनाएंगे वो किया कि नहीं किया, बनारस को क्यूटो बनाने का काम आपने कहा था तो मैं देखने आऊँगा उत्तर प्रदेश की बनारस क्यूटो बना है कि झूठा रह गया, कहते थे, उस प्रधानमंत्री को झझोड़ने का काम किया। उन्होंने कहा लालटेन से ढूंढूंगा, तीर से मारूंगा, हाथ से पकड़कर फेंक दूंगा।
लेकिन आपको ये नहीं लगा कि चुनाव प्रचार के दौरान बहुत व्यक्तिगत मामला हो गया, तलखी बहुत थी, खासकर लालू जी और नरेंद्र मोदी के बीच?
देश के प्रधानमंत्री को इतनी हल्की स्तर पे नहीं उतरना चाहिए।
आपके नेता पर भी तो आरोप लगे।
हमारे नेता उसके बाद शुरू हुए हैं,
जवाब देना जरूरी तो
नहीं? जवाब देना जरूरी था, क्योंकि देश का प्रधानमंत्री अगर परिवार पर उतर आवे, शैतान पर उतर आवे, इन तरह की छोटी छोटी बातों पर अगर नहीं जवाब देते तो बिहार की जनता उनको ये समझती कि ये प्रधानमंत्री की बात का जवाब नहीं दे पा रहा हमारा नेता। उन्होंने मुंहतोड़ जवाब दिया, उसी जवाब का परिणाम है कि बिहार की जनता इंटैक्ट हुई और ये भरपूर बहुमत देने का काम किया।
ये थे राष्ट्रीय जनता दल के नेता अशोक सिंह, उनसे बात कर रहे थे बीबीसी संवाददाता पंकज प्रियदर्शी। और आइए अब सीधे चलते हैं बिहार की राजधानी पटना, हमारे सहयोगी मनीष शांडिल के पास। मनीष, आप हमें सुन पा रहे हैं तो ये बताएं कि पटना से छपने वाले अखबारों में आज क्या कुछ छपा है?
जी, जाहिर है कि जितनी बड़ी जीत है महागठबंधन की, उसी ढंग से जो अखबारों के हेडलाइंस हैं वो हैं हिंदुस्तान अखबार कहता है कि जो उसकी हेडिंग है महागठबंधन की महाविजय। दैनिक भास्कर की बात करें तो उसकी हेडिंग है फिर लालू का बिहार नीतीश से सरकार। नीतीश से सरकार वो उस कैंपेन के गाने का हिस्सा है जिसका जिसका जिसकी धुन हुआ करती थी कि फिर से एक बार हो नीतीश से कुमार हो। दैनिक जागरण की बात करें तो इसका इसका शीर्षक है लालू नीतीश के साथ हुआ बिहार महागठबंधन का महाधमाका। तो दिवाली का असर और जैसे पटाखों की बात चुनाव दौरान चुनाव प्रचार के दौरान हुई थी तो अखबारों के हेडलाइंस में भी वो झलक रहा है। प्रभात खबर की हेडलाइन है फिर नीतीश कुमार। तो ये कुछ हिंदी अखबारों के हेडलाइंस हैं और ज्यादातर अखबारों में के तस्वीरों की बात करें तो उसमें लालू और नीतीश गले मिलते हुए जो एक साथ उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के पहले गले मिले थे वो तस्वीर छाई हुई है। अंग्रेजी अखबारों में द टाइम्स ऑफ इंडिया की हेडलाइन है नीतीश इन बिहार मोदी बाहर, मोदी बाहर माफ करेंगे नीतीश इन बिहार मोदी बाहर। वहीं हिंदुस्तान टाइम्स की हेडिंग है नीतीश लालू डायनमो स्टंट बीजेपी।
जी मनीष बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया इस समाचार पत्रों की सुर्खियां बताने के लिए। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बताता चलूं कि तमिलनाडु के कुछ इलाकों में चक्रवाती तूफान की आशंका संबंधी खबरें आ रही हैं। इस बारे में हम आपको अगले कार्यक्रम में और जानकारी देंगे। और अब हर सोमवार की तरह पाकिस्तान से वसतुल्लाह खान की डायरी आ चुकी है, सुनते हैं आज क्या कुछ है इसमें।
कभी कभी बेवक्त का मजाक भी दुश्मनी का कारण बन जाता है और बाज़ दफ़ा पकवान ज़्यादा पकाने से भी बिगड़ जाता है। अगर मोहन भागवत जी इलेक्शन कैंपेन से दूर रहते तो इसका फ़ायदा बीजेपी को ही होता। जब आप अरहर की दाल आसमान से ज़मीन पर लाने की बजाय 125,000 करोड़ रुपए के विकासशील तारे तोड़ के वोटरों की झोली में डालने जाएंगे तो फिर यही होता है। जब आप जीत के सारे आंकड़े 1.5 वर्ष पहले की कामयाबी के साए तले बनाएंगे तो फिर यही होगा जो हो गया। हो सकता है बहुत सी जगहों पे गाय वोट भी देती हो मगर बिहार में गाय दूध ही देती है, वरना तो पिछले 26 वर्ष में यहाँ एक आध गुजरात मुंबई या अयोध्या होना तो बनता था। अमित शाह ने कहा क्या तुम जंगल राज में वापस जाना चाहते हो? बिहारियों ने कहा हाँ जाना चाहते हैं। अमित शाह ने कहा महागठबंधन आ गया तो रिजर्वेशन का कोटा पिछड़े वर्गों से छीन के अल्पसंख्यकों यानी मुसलमानों को बांट देगा। वोटरों ने कहा भले बांट दे तुम्हें क्या। मोदी जी ने 30 से अधिक रैलियों में से एक में कहा ये चुनाव दिखा देगा कि 21वीं सदी में बिहार भारत एवं विश्व के नक्शे में कहाँ खड़ा है। बिहारियों ने बता दिया देखो हम यहाँ खड़े हैं तुम कहाँ खड़े हो। वैसे आपस की बात है, एक पार्टी जब बिहार को पिछड़ेपन गरीबी अंधेरे बेरोजगारी कच्ची सड़कों से मुक्त करना चाह रही थी, शिक्षा अस्पताल साफ पानी और बिजली गांव गांव दान करना चाह रही थी और इसके लिए एक भारी पैकेज का भी ऐलान हो चुका था, तो बिहारियों को कुछ तो एतबार करना चाहिए था, आदर देना चाहिए था। ऐसे तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए था जैसे उन्होंने कर डाला। मगर भाजपा को दिल छोटा नहीं करना चाहिए। हमारे पाकिस्तान में भी ऐसे उदाहरण कई बिखरे पड़े हैं। चलिए दिल बढ़ाने के लिए एक किस्सा सुना देता हूँ। जैसे बिहार से गंगा मैया गुजरती है वैसे ही हमारे पंजाब से सिंधु नदी गुजरती है। इसी सिंधु नदी के किनारे मुजफ्फरगढ़ के इलाके में एक सुस्त पटवारी बहुत समय से जमा हुआ था। कई अफसर आए मगर उसका कभी ट्रांसफर ना कर सके। 10 वर्ष बाद एक नए अफसर ने लालच दिया कि हम तुम्हें पटवारी से तहसीलदार के पद पे तरक्की देते हुए मुजफ्फरगढ़ से राजनपुर ट्रांसफर कर रहे हैं। पटवारी ने हाथ जोड़ दिए, हुजूर जब मैं तरक्की नहीं करना चाहता तो हर अफसर मुझे बार बार तरक्की क्यों दिलवाना चाहता है। काश ये किस्सा पहले सुना देता तो शायद मोदी जी बिहार को तरक्की के रास्ते पर डालने की जिद ना करते। गरीब आदमी हो या गरीब राज्य कभी कभी बहुत सारे रुपए एक साथ देख के डर भी जाता है। इमरान खान भी पाकिस्तानियों को बार बार कह रहे हैं कि चलो मेरे साथ नए पाकिस्तान की ओर, मगर वोटर हर बार यही कह देता है हम पुराने पाकिस्तान में ही ठीक हैं। वैसे अब तक कराची के औरंगी टाउन में रहने वाले लाखों बिहारियों में से किसी एक ने भी पटाखा नहीं फोड़ा। आज्ञा दीजिए मैं जरा जाके कारण मालूम करता हूँ।
یہ تھے پاکستان سے وسط اللہ خان، ہمیشہ کی طرح اپنے ایک الگ ہی انداز میں، اور کھیل سماچاروں کی اور بڑھیں گے، لیکن اس سے پہلے جان لیتے ہیں آج دیش دنیا کی کن خبروں پر رہے گی ہماری نظر۔
بھارتیہ کرکٹ کنٹرول بورڈ یعنی بی سی سی آئی کی سالانہ عام سبھا بیٹھک آج ممبئی میں ہونے والی ہے۔ اس میں بورڈ کے لیے لوکپال نیوکت کیے جانے پر فیصلہ لیا جا سکتا ہے۔ ون رینک ون پینشن اسکیم کے لیے آندولن کر رہے پورو سینا ادھیکاری آج اپنے پدک سرکار کو لوٹا سکتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ ون رینک ون پینشن دینے کی سرکاری یوجنا میں کئی وسنگتیاں ہیں۔ کمیونسٹ پارٹی آف انڈیا یعنی سی پی آئی آج تلنگانہ میں سرکار کے خلاف ویرودھ پردرشن کرے گی۔ سی پی آئی کا آروپ ہے کہ راجیہ سرکار کسانوں کے مدعے کو حل کرنے میں اسفل رہی ہے۔ انتراشٹریہ خبروں کی بات کریں تو میانمار میں 25 سال بعد پہلی بار اپیکشاکرت سوتنتر روپ سے ہوئے سنسدیہ چناؤں کی متگننا شروع ہو چکی ہے۔ آج دوپہر تک ان چناؤں کے پہلے آدھیکارک نتیجے آنے کی سمبھاونا ہے۔
اور اب کھیل سماچار۔
کھیل سماچاروں کے ساتھ میں ہوں آدیش کمار گپت۔ دکشن افریقہ کو موہالی میں کھیلے گئے پہلے ٹیسٹ میچ کو 3 دن میں ہی 108 رن سے ہرانے کے بعد اب بھارتی کھلاڑیوں کو دوسرے ٹیسٹ میچ سے پہلے تھوڑا آرام کرنے کا اوسر بھی مل گیا ہے۔ دونوں ٹیموں کے بیچ دوسرا ٹیسٹ میچ شنیوار سے بنگلور میں کھیلا جائے گا۔ اب میچ بھلے ہی بھارت نے جیتا، لیکن کچھ سوال بھی ہیں جس کے جواب ٹیم ضرور شنیوار سے پہلے جاننا چاہے گی۔ 2020 اور ایک دیوسیہ سیریز کے بعد بھی سلامی بلے باز شکھر دھون کی خراب فارم کا سلسلہ جاری ہے، تو بھارت کے مدھم کرم اور پچھلے بلے بازوں پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا۔ دوسری پاری میں بھارت کے آخری 6 وکٹ کیول 36 رن پر گر گئے۔ اتنا ہی نہیں، جس ٹرننگ وکٹ پر افریقی بلے بازوں کی بھی ایک نہیں چلی، وہیں بھارت کے کپتان وراٹ کوہلی بھی دونوں پاریوں میں کچھ خاص پردرشن نہیں کر سکے۔ دوسری طرف دکشن افریقی بلے باز بھی ان ٹرننگ وکٹ پر کیسے ٹکا جائے اس کا ابھیاس ضرور کریں گے۔ ادھر آسٹریلیا نے برسبین میں کھیلے جا رہے پہلے ٹیسٹ میچ میں نیوزی لینڈ پر اپنا شکنجا کس دیا ہے۔ کل جب چوتھے دن کا کھیل سماپت ہوا تب نیوزی لینڈ نے اپنی دوسری پاری میں 3 وکٹ کھو کر 142 رن بنا لیے تھے۔ نیوزی لینڈ کے سامنے جیت کے لیے 504 رنوں کا لکشیہ ہے، یعنی ابھی اسے جیت کے لیے کل 362 رنوں کی ضرورت تھی۔ وہیں امریکہ کے نیو یارک شہر میں سچن تیندولکر اور شین وان کی ٹیمیں جب آمنے سامنے ہوئی تو ان کا مکھیہ ادیشیہ ہار جیت سے زیادہ امریکہ میں کرکٹ کو لوکپریہ بنانا تھا۔ دونوں ٹیموں میں بیتے زمانے کے ایک سے بڑھ کر ایک ستارے تھے اور ان کی چمک دیکھنے کے لیے اسٹیڈیم میں درشکوں کی بھیڑ بھی تھی۔ انتتہ 2020 مقابلے میں وانس واریئرز نے سچن بلاسٹرز کو 6 وکٹ سے بات دی۔ وانس واریئرز نے جیت کے لیے 141 رنوں کا لکشیہ 17.2 اوور میں ہی رکی پونٹنگ کے ناباد 48 اور کمار سنگکارا کے 41 رن کی مدد سے حاصل کیا، جبکہ اس سے پہلے ویریندر سہواگ کے 55 رنوں کی مدد سے سچن بلاسٹرز نے نردھارت 20 اوور میں 8 وکٹ کھو کر 140 رن بنائے تھے۔
چھ بج کر 58 منٹ ہونے کو ہیں اور وقت ہو چلا ہے اس کے ساتھ ہی ایک بار پھر پرمکھ سماچاروں کا پرگتی سکسینہ سے۔
بی بی سی سماچار۔ بہار کے ودھان سبھا چناؤ میں مہا گٹھ بندھن کو بھاری جیت ملی ہے۔ اس گٹھ بندھن میں راجد، جدیو اور کانگریس شامل ہیں۔ میانمار میں 25 سال بعد اپیکشاکرت سوتنتر روپ سے ہوئے عام چناؤں کی متگننا شروع ہو گئی ہے۔ امریکہ کے ودیش منتری جان کیری نے بھی ان چناؤں کا سواگت کیا ہے۔ ادھیکرت ویسٹ بینک میں اسرائیلیوں پر اور حملے ہونے کی خبر ہے۔ یہ گھٹنائیں اس وقت ہو رہی ہیں جب اسرائیل کے پردھان منتری امریکی راشٹرپتی اوباما سے ملنے والے ہیں۔ فرانس کے ودیش منتری لوراں فابیے نے وشو کے نیتاؤں سے اپیل کی ہے کہ وہ موسم میں آ رہے بدلاؤ سے نپٹنے کے لیے جلد سمجھوتا کریں۔ ادھر وشو بینک نے بھی چیتاونی دی ہے کہ اگر گلوبل وارمنگ کو روکنے کی کوشش نہ کی گئی تو ورش 2030 تک 10 کروڑ اور لوگ غریبی اور کمی کا جیون جینے کے لیے مجبور ہو جائیں گے۔ مصر میں ادھیکاریوں نے ایک پرسدھ کھوجی پترکار اور مانواادھیکار سمرتھک کو ایک لیکھ لکھنے کے لیے گرفتار کر لیا ہے۔ انٹرنیٹ پر پرکاشت یہ لیکھ ان سینا ادھیکاریوں کے مقدمے کے بارے میں تھا جن پر ستہ پلٹ کی سازش کا آروپ ہے۔ مانواادھیکار سنستھا ایمنیسٹی انٹرنیشنل نے ان کی گرفتاری کی آلوچنا کی ہے۔ بی بی سی سماچار۔
नमस्कार भारत में इतना ही। कार्यक्रम का तकनीकी पक्ष संभाल रहे थे राजेश चौहान। खबरों को आप तक पहुंचाने में हमारी मदद कर रहे थे। ठीक एक घंटे के बाद विश्व भारती में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक खबरों के लिए आइए हमारी वेबसाइट bbchindi.com पर।